हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। हाउ हैव यू बीन इन लास्ट 3 ईयर्स विदाउट मी, मिसेज धृति अर्णव सिंह रायजादा। ये आवाज और ये अल्फाज धृति के कानों में गूंजने लगे। सालों बाद किसी ने उसे इस तरह संबोधित किया था। इस आवाज को तो वो बेहोशी में भी पहचान जाती। धृति के आगे बढ़ते कदम ठिठक गए और सीने में मौजूद दिल की धड़कनें जैसे थमसी गईं। चेहरे का रंग उड़ गया और आंखें बेयकीनी से फैल गईं। वो अब भी हकीकत और भ्रम के बीच उलझी हुई थी, शायद इस हकीकत पर विश्वास करने से कतरा रही थी। उससे चंद कदमों की दूरी पर खड़ा अर्णव कुछ पल उसके जवाब का इंतजार करता रहा, पर जब धृति ने जवाब में एक शब्द नहीं कहा, बस यूं ही बुत बनी वहां खड़ी रही थी, अर्णव ने धीरे से उसकी ओर कदम बढ़ा दिए। कैसी हो स्वीटहार्ट, 3 सालों की दूरियों में कहीं अपने इकलौते पति को भूल तो नहीं गई, या जानबूझकर मेरी आवाज को अनसुना कर रही हो, मुझे नजरअंदाज कर रही हो कि कहीं नजरें मिलने पर हकीकत बयां ना हो जाए। अर्णव का लहजा अब भी सर्द था। धृति सुन रह गई थी, अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई थी। ये अर्णव ही था जो 3 साल बाद यूं बिना बताए अचानक उसकी जिंदगी में लौट आया था। धृति को इस लम्हे में एहसास हो गया कि अब तक जो उसे महसूस हो रहा था वो उसका भ्रम नहीं था, हकीकत थी। जिस हकीकत को वो झुठलाने और उससे दूर भागने की कोशिश कर रही थी, वो हर बीतते पल के साथ उसके और करीब आता जा रहा था। धृति की सांसें आपस में उलझ गईं और दिल घबराहट के मारे जोरों से धड़क उठा। उसने तुरंत ही हड़बड़ी में कदम आगे बढ़ाए ही थे कि उसकी कलाई किसी की मजबूत हथेली में फंस गई और अर्णव की गंभीर आवाज उसके कानों से टकरा कर उसके दिल को बेचैन कर गई। भाग रही हो मुझसे, मेरा सामना करने से बच रही हो, वाकई तुम्हें लगता है कि जैसे सालों पहले मुझे सोता छोड़कर चली गई थी, अब भी चली जाओगी और मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? भूल गई कि तुम्हें खुद से दूर भेजते हुए क्या कहा था मैंने? अर्णव की बात सुनकर धृति को उसकी सालों पहले कही बात याद आ गई। पल भर को उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके शरीर से सारी जान निकाल ली हो, सारा खून सूख गया हो और अब उसमें जरा भी ताकत शेष नहीं। पर वो इस तरह अर्णव के सामने कमजोर नहीं पड़ सकती थी, उसे खुद पर हावी नहीं होने दे सकती थी। धृति ने पल भर को अपनी आंखों को मूंदते हुए अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और अपनी बांह झटकते हुए अर्णव की ओर पलट गई। अर्णव की हथेली से उसकी कलाई आजाद हो चुकी थी और अब वो सालों बाद अर्णव के सामने खड़ी थी। धृति ने उसकी निगाहों से निगाहें मिलाते हुए सख्त अंदाज में जवाब दिया, हाँ, मुझे नहीं याद कि आपने क्या कहा था और न ही मुझे बीती बातें याद करने का कोई शौक है। मैं आपको और अपने पास्ट को बहुत पीछे छोड़ आई हूँ और उस पास्ट से जुड़ी किसी बात और किसी इंसान को याद करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, तो बेहतर होगा कि आप भी बीती बातों को दोहराने की कोशिश न करें और मुझसे दूर रहें। धृति जैसे ही अपनी बात कहकर चुप हुई, अर्णव ने उसकी कमर में अपनी बांह लपेटते हुए उसे झटके से अपनी ओर खींच लिया और इंटेंस निगाहों से उसे देखते हुए संजीदगी से बोला, ये तो अब मुमकिन नहीं स्वीटहार्ट, एक बार अपनी गलतियों के कारण न चाहते हुए भी खुद से दूर जाने दिया था और बीते 3 सालों से तन्हा तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ, अपनी गलतियों की सजा भुगत चुका हूँ मैं, और तुम्हारा यूँ दोबारा मुझसे टकराना इस बात का सबूत है कि मेरी सजा अब पूरी हुई। अब तुम क्या, दुनिया की कोई ताकत मुझसे तुमसे दूर रहने पर मजबूर नहीं कर सकती, 100 नखरों के बाद ही सही, पर आना तुम्हें इन्हीं बाहों में है और जितनी जल्दी तुम ये बात समझ लोगी उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि इस बार मैं किसी कीमत और सूरत में तुम्हें खुद से दूर जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। धृति, जो उसके यूँ अचानक खींचने से उसके सीने से जा लगी थी और उससे छुटने को छटपटा रही थी, उसकी जुनूनियत भरी बातें सुनकर जलती निगाहों से उसे घूरते हुए उस पर चीख पड़ी, तो क्या जबरदस्ती करेंगे मेरे साथ, ब्लैकमेल करके मुझे मजबूर करेंगे अपने साथ रहने पर, ऐसे पहले किया था? बिल्कुल नहीं, अपनी गलतियों को दोहराने का कोई इरादा नहीं मेरा, इस बार जोर जबरदस्ती या ब्लैकमेलिंग से नहीं, बल्कि प्यार और मोहब्बत भरी अपनी कोशिशों से तुम्हें मजबूर कर दूंगा कि तुम खुद आकर मेरी बाहों में समाओगी। अर्णव बेहद गंभीर नजर आ रहा था, पर धृति का पारा अब भी चढ़ा हुआ था। उसने तुनकते हुए व्यंग भरे लहजे में जवाब दिया, ख्वाब बड़े अच्छे देख लेते हैं आप, पर अफसोस कि हर ख्वाब की किस्मत में पूरा होना नहीं लिखा होता, कुछ ख्वाबों की नियति ही उसका अधूरापन होती है, वैसे ही आपका ये ख्वाब कि मैं आपकी बाहों में आकर समाऊंगी कभी पूरा नहीं होगा। वो तो वक्त ही बताएगा स्वीटहार्ट कि मेरे ख्वाब की किस्मत में अधूरापन लिखा है या मोहब्बत की नियति पूरा होना। सालों पहले नफरत को परास्त करके मोहब्बत जीती थी, लेट्स सी इस बार जीत मोहब्बत की होती है या मोहब्बत को हराकर जिद और नाराजगी जीत का परचम लहराती है। बहुत वक्त होगा आपके पास, तो अच्छे से देखते रहिएगा। पर मेरे पास फिजूल वक्त नहीं आप पर बर्बाद करने को, इसलिए छोड़िए मुझे, वरना चिल्ला चिल्लाकर अभी यहाँ सबको बुला लूंगी। धृति की करारी धमकी सुनकर अर्णव कुछ इस अंदाज में मुस्कुराया जैसे उसकी बात का मजाक उड़ा रहा हो। फिर उसकी धमकी को हवा में उड़ाते हुए उसके गाल को अपनी हथेली से सहलाते हुए बेफिक्री से बोला, शौक से चिल्लाओ स्वीटहार्ट, पर उससे पहले जरा मेरी इस बात पर गौर फरमाओ कि हमारे रिश्ते के बारे में सारी दुनिया जानती है। सबको पता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तो जब लोग यहाँ आकर पूछेंगे कि क्या हुआ, तो क्या जवाब दोगे उन्हें? और हम पति पत्नी के बीच वो क्या कर लेंगे? किसमें इतना दम है कि मुझे अपनी ही पत्नी से बात करने से रोक सके? ध्रुति बेयकीनी से अर्णव को तकती ही रह गई। कितना तेज था वो, हर स्थिति को अपने फायदे में कैसे इस्तेमाल करना है बखूबी आता था उसे। उसने वो बात छेड़ी कि ध्रुति स्तब्ध सी खड़ी रह गई। उसके लम्स ने जैसे उसके शरीर के सारे खून को जमा दिया था। रीढ़ की हड्डी में सिरहन महसूस करते हुए वो खुद में ही सिमट गई। सांसें बगावत पर उतरी और दिल बेगाना हो गया। ध्रुति के चेहरे के बदलते रंग को देखकर अर्णव की स्याह काली आंखें शरारत से चमकी और होंठों के कोने मुड़ गए। इस वक्त छोड़ रहा हूँ तुम्हें, पर याद रहे कि इस बार तुम जितनी चाहे कोशिश करो, मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। तुम्हारी जिंदगी के सभी रास्ते अब तुम्हें मेरे सामने लाकर खड़ा करेंगे और मेरे पास लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा तुम्हारे पास। अपनी बात पूरी करते हुए अर्णव ने उसे आजाद कर दिया। धृति छिटक कर उससे दूर हुई और खींचते हुए बोली, अगर ऐसा हुआ तो मैं रास्तों में भटकते हुए हुई सारी जिंदगी बिता दूंगी, पर आपके पास लौट कर कभी नहीं आऊंगी। धृति ने उसी के अंदाज में उसे करारा जवाब दिया और पलटते हुए तेज कदमों से वहाँ से लगभग भाग गई। उसकी हड़बड़ी और ये तीखे तेवर देखकर अर्णव मन ही मन हंस पड़ा। धृति पार्टी हॉल की ओर तेजी से बढ़ ही रही थी कि मृणाल अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। शायद उसे लौटने में देर होते देखने आ रहा था। धृति इतनी जल्दबाजी में थी कि मृणाल से टकराते टकराते बची थी। धृति तुम ठीक तो हो, इतनी हड़बड़ाती हुई क्यों लग रही हो तुम? धृति की चढ़ी सांसें और पसीने से भीगा चेहरा देखकर मृणाल ने चिंतित स्वर में सवाल किया। धृति ने पलटकर घबराई निगाहों से एक बार पीछे देखा। अर्णव दूर दूर तक भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। फिर गहरी सांस छोड़ते हुए वापस उसकी ओर पलट गई। मैं ठीक हूँ, बस मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, मुझे घर वापस जाना है। धृति का जवाब सुनकर मृणाल चौंकते आ, इतनी जल्दी? अभी तो पार्टी ठीक से शुरू भी नहीं हुई। कुछ देर रुक जाओ, केक कटिंग के बाद चलते हैं घर। ऐसे चले जाएंगे तो मिस्टर भट्ट को बुरा लग जाएगा। धृति का मन तो यहाँ एक पल ठहरने का भी नहीं था, पर वो मृणाल पर ज्यादा जोर भी नहीं डाल पाई और बेमन से सर हिला दिया।
उनके पीछे अर्णव भी वहाँ पहुँचा और धृति को किसी लड़के के साथ देखकर गहरी निगाहों से उन्हें देखने लगा। कुछ देर में केक कटिंग हुई और एक बार फिर डांस शुरू हुआ। धृति का मन तो नहीं था, पर मृणाल को इनकार भी नहीं कर सकी। उसके साथ आगे बढ़ तो गई, पर अर्णव की मौजूदगी उसे असहज कर रही थी। अर्णव ने भी मौका देखकर मिस्टर भट्ट की बेटी की हथेली थामी और बाकी कपल्स के बीच आ गया। बेचैनी से यहाँ वहाँ भटकती धृति की निगाहें जब अर्णव पर पड़ी तो उसे किसी और लड़की के साथ देखकर जाने क्यों, पर अंदर सीने में कुछ सुलगता हुआ सा महसूस हुआ और अगले ही पल उसने उस पर से निगाहें फेर लीं। ये देखकर अर्णव के लबों पर शरारती मुस्कान थिरक गई।